संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञान्तिमरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रपरणां मोक्षशास्त्रनाम ध्येयम् असमूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तद्धरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास् तेषां वचनोऽनुसारमासाद्य श्रीमद् उमास्वामी आचार्यदेवैर्विरचितम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यसेतिस्प्रतीकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि हरिगन्तवासियत्थं गणकरदेवीः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमभूवयं शिरसा निशायवन्ति सुदभक्तिकांसकोकोतसालोचिं भङ्गुभङ्गुपहिन्ने पाङ्गुनेपर्यम्मि सुत्पणिमाणि उपभुगे चूल्या चेसुतथेतुविधं कायं सयानिष्कालं पञ्चमी पूजयमे वन्दामि नमंसामि दुःखकोकमखोयिलाव सुगैगुण्डं समायमुण्डं जिनुगुणसम्पत्तिगोचं नमोस्तु पूर्वाणि श्री आचार्यविन्दयं स्वाध्यायविलयं श्री आचार्यभक्तिकाय शुभं करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावनापटुमतीभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः शतीशगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुके कुशले धम्मायरिय सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन या तरन्ति संसारसायरं घोरम् छिन्नन्ति अक्षकं मम जन्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुभा पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायवन्त्यैरिभक्तिकौसकोपोतसालोचिं समनानुसमदर्शसमचरयुतानं पञ्चविहाचारणमायर्याणम् आयरादिसुदनानुपदेशानं वज्रायाणं तिरुवनुपानन्द्रायाणं सबुसावूनं सयानिचकालं पञ्चमी पूजयमे वन्दामि नमंसामि दुःखकोकमखो वोहिलाव सुगैगुणं समायगुणं जिनगुणसम्पत्तिगुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंदु स्वामी के, आचार्य उमा स्वामी महाराज के, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज ये तत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो पहले प्रतिज्ञा की थी कि किम नु खलु आत्मनिहितम स्यादिति, आत्मा का हित किसमें है, तो आचार्य महाराज ने कहा था कि मोक्षा, मोक्ष में आत्मा का सुख है। तो कस्य प्राप्ति उपाय, तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पहला सूत्र यह था कि सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और उसी के अनुरूप जो आचरण है वही मोक्ष का मार्ग है, और ऐसे मोक्ष के मार्ग में हमें सात तत्वों को जानना जरूरी है। सात तत्वों पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, और या ये कहो कि सात तत्वों को जान करके अपने आत्म तत्व पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, अपने आत्मा का स्वरूप का बोध होना ही सम्यक ज्ञान है, और अपने आत्मस्वरूप में लीन होने का नाम ही सम्यक चारित्र है। यह मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग के माध्यम से हम संसार के कारणभूत आश्रय और बंध तत्वों को रोकते हैं, संवर और निर्जरा को ग्रहण करते हैं, ताकि हम मोक्ष पा सकें। इस दसवें अध्याय में मोक्ष का क्या स्वरूप है, देखो, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। हमें ये कोई बता देवे कि आपके घर में बहुत अंधेरा है, तो हमने समझ लिया कि ठीक है अंधेरा है, तो भैया अंधेरा है तो उससे क्या परेशानी है, तो परेशानी ये है कि अंधेरे में चीज़ें दिखती नहीं हैं, प्रकाश में दिखती हैं। ये प्रकाश क्या चीज़ है, हमने तो कभी देखा ही नहीं। तो पहले आप प्रकाश के बारे में भी जान लो। अंधेरा छोड़ने के लिए जितना अंधेरे के बारे में मालूम करना जरूरी है, उतना ही प्रकाश के बारे में भी मालूम करना जरूरी है। इसी तरह आश्रय और बंध से मुक्त होने के लिए हमें ये भी जानना पड़ेगा कि बंध का विपरीत तत्व क्या है, तो कहते मोक्ष है। हम बंध की प्रक्रिया को अगर रोकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें अपने स्वभाव की मुक्ति की या कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। वह मोक्ष कैसा है, उसका हमारे भीतर एक इमेजिनेशन तो होना चाहिए कि हाँ ऐसी मुक्त अवस्था होती है, वो मेरा प्राप्तव्य है। तो इन नौ सूत्रों में मोक्ष का क्या स्वरूप है, मुक्त जीव किस प्रकार होते हैं, ये सब बातें इतने में आएंगी। पहला सूत्र है मोह शयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय शयाच केवलम। कहते मोह का क्षय होने से केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म, इनका क्षय होने से केवल ज्ञान होता है। अरे तो एक साथ कह देते कि चार कर्मों के क्षय होने से होता, कह सकते थे, लेकिन हमें ये ज्ञान करवाना है कि पहले मोह का क्षय होता है और उसके अनंतर ज्ञान आवरण, दर्शनावरण और अंतराय, एक साथ तीनों कर्मों का क्षय करके आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त करती है। इसलिए अलग अलग कह दिया, मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम। पहले नंबर तो मोह का ही क्षय होता है, और मोहनी कर्म का क्षय बारहवें गुणस्थान में होता है, और बारहवें के अंतिम समय तक जो है पहुंचते पहुंचते फिर तीन कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका क्षय हो जाता है, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान में प्राप्त हो जाने पर कैसी मुक्ति मिल गई, तो कहते अब जन्म मरण नहीं होगा। दो प्रकार की मुक्ति है, एक जन्म मरण से मुक्त होना और एक कर्मों से मुक्त होना। तो अभी कर्मों से मुक्त तो हुए नहीं, अभी जन्म मरण से मुक्त हो गए, अभी शरीर में बैठे हैं, चार अघातिया कर्म लगे हैं, चार घातिया कर्म भर नष्ट हुए हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये एक साथ अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया भगवान के। ये केवल ज्ञान की अवस्था, किसी भी जीव को सिद्धत्व प्राप्त करना है तो पहले केवल ज्ञान तो प्राप्त करना ही पड़ेगा, और जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया अब उसकी मजबूरी है, उसको सिद्ध बन नहीं पड़, बैठे नहीं रह सकता। अब अंतर्मुहूर्त लगाओ और चाहे पूर्व कोटि की आयु 8 वर्ष कम कर लो, उतनी लगाओ, लेकिन जीवन नियम से। अब कई लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जी अपने जो तीर्थंकर हैं भी, अब तीर्थंकर हैं सिद्ध बन गए कि नहीं बने? भैया वे तो उसी समय सिद्ध बन गए, लेकिन वे तीर्थंकर बन के सिद्ध बने हैं, इसलिए हम उनकी तीर्थंकर अवस्था को अभी भी मूर्ति बना करके पूछते हैं। नहीं तो एक प्रश्न आया था कि कई लोगों को भगवान, केवली, सर्वज्ञ, तीर्थंकर, इनमें अरहंत में इनमें डिफरेंस नहीं मालूम। तो भैया जो केवली हैं वे ही अरहंत कहलाते हैं, वे ही सर्वज्ञ कहलाते हैं, वे ही तीर्थंकर अवस्था में जब होते हैं और तीर्थंकर पद को प्राप्त करके अरहंत अवस्था को पाते हैं तब वे ही अरहंत और तीर्थंकर भी कहलाते हैं। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हैं? ये अवस्था पहले प्राप्त होती है, उसके बाद अब क्या होगा? कहते बंद हे तो भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा। वास्तव में तो समस्त बंद के हेतुओं के अभाव हो जाने से और निर्जरा होने से सब कर्मों का आत्यंतिक क्षय होता है, उस कर्मों के अत्यंत क्षय की अवस्था का नाम ही मोक्ष है। अभी बंद का कोई हेतु बाकी है क्या केवली भगवान के? तो कहते हाँ अभी बंद के हेतु उनके बाकी हैं, योग का निरोध अभी किया नहीं है। योग का निरोध करेंगे, आखिरी के 2 शुक्ल ध्यान धारण करेंगे, भले उपचार से ध्यान होता उनको लेकिन अभी वो कार्य शेष है और उसको करके अभी कर्मों की निर्जरा निरंतर हो रही है। अब कर्मों का आश्रय तो नहीं हो रहा केवल ज्ञान के बाद, होता भी है तो एक समय का होता है, हुआ न हुआ सब बराबर है, हैं? तब भी अब निर्जरा निरंतर हो रही तो बंद के हेतु का अभाव हो जाएगा और निर्जरा निरंतर चलती रहेगी तो क्या होगा? नई चीज तो आ नहीं रही और पुरानी खलास हो रही तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा सब। तो ऐसी अत्यंत निर्मल अवस्था, कर्म से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है, वो उसी को अपन सिद्ध अवस्था कहते हैं। ये जो है 2 सूत्रों में कैसे प्रक्रिया होती है वैसा बता दिया कि केवल ज्ञान हुआ, 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए, सर्वज्ञ हो गए, केवली कहलाने लगे, अरहंत अवस्था इसी का नाम है, और फिर उसके बाद शेष रहे कर्मों का भी अभाव करके मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया। कई लोग पूछते हैं कि महाराज जब मुक्त हो जाएंगे तो वहां क्या करेंगे? अब बैठे बैठे इतनों समय कछु तो काम बताओ। तो वहां पर ये काम धंधा यहाँ का है संसार का, ये सब काम से वो निवृत्त होते, जैसे कि माँ ने भोजन बनाया, सबको करवा दिया, खुद भी कर लिया, अब क्या करे? अब भोजन करके जो आनंद है, अब जी बात अलग है कि संज्ञा को फिर बनाऊ ने ओ की चिंता, और जो उनको संज्ञा की चिंता नहीं है उसको क्या, वो तो भोजन बना के खा लिया और अब आनंद ले रहे बैठे हैं शांति से। तो ऐसे ही संसार में जो करने योग्य था सिद्ध भगवान ने सिद्धत्व को प्राप्त करके मानो वो सब कर लिया है, अब कुछ करने के लिए शेष नहीं रहा। अगर है तो इतना ही कि अपने आत्म स्वरूप में लीनता है और उसी का आनंद अनंत काल तक, काले कल्प शते पिचा गते शिवा नाम विक्रिया। कहते कितने भी कल्प काल बीत जावे, अनंत काल बीत जावे, तब भी सिद्ध भगवान अपने उस स्वभाव से च्युत नहीं होते, उसी स्वभाव में लीन रहे आते। औपशमिकादि भवदत्वा नाम चा, और जो हमने पहले कहे थे औपशमिक शाय कौ भाव मिश्र श्रीजीवस्य स्वतत्व महोदयिक पारिनामिक चा, ये 5 भाव जीव के होते हैं, सो इसमें से 4 भाव तो कर्मों के सापेक्ष हैं, सो उन 4 भावों का अभाव हो जाता है। और जो पारिनामिक भाव है, सो पारिनामिक भाव के भी 3 भेद हैं, एक तो है सिद्धत्व, नहीं एक है जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। अब जोन जीव मोक्ष प्राप्त कर गया तो वो कौन कहलाएंगे? भव्य कहलाएंगे। तब जब भव्यत्वपने अभव्य तो है नहीं और भव्यत्वपना भी प्राप्त है ही, अकेला क्या रह जाएगा, जीवत्व रह जाएगा। तो वो ही कहते हैं औपशमिकादि भावों का और भव्यत्व भाव का भी अभाव, ने अभव्य ने अभव्य जो होने योग्य था वो तो हो ही गया उनके, तो भव्य अभव्य दोनों की सीमा से पार हो गए वे। इसमें एक चीज लिखी है कि पारनामिक भाव में भी जो भव्यत्व और अभव्यत्व भाव है वो भी जीव का स्वभाव न हो करके आपेक्षिक भाव है, इसलिए हाँ संसारी जीव की अपेक्षा भव्य और अभव्य बना है, इसलिए पारनामिक भाव में से भी जीवत्व तो रहा आता है, भव्यत्व और अभव्यत्व का फिर व्यवहार होता नहीं, वो संसारी जीव में लगाया जाता कि जीव भव्य है के अभव्य है। इस प्रकार कितनी बात हो गई, वहां पर जो कर्मों के उपशम क्षय क्षयोपशम इत्यादि से होने वाले भाव थे वो भी नहीं रहे, पारिणामिक भाव में से जो भव्यत्व भव्यत्व था उससे भी पार हो गए, जीवत्व भाव रहा, उसी को आगे कहते अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्या। फिर क्या शेष रहा वहां पर, तो कहते इनका अभाव नहीं होता। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान के अभाव का नाम ही मुक्ति है, तो कहते ऐसा नहीं, ज्ञान का भाव हो जाए तो जीव ही को भाव हो जाए, इसलिए कहना पड़ा कि केवल सम्यक तो केवल ज्ञान केवल दर्शन और सिद्धत्व पना इस चीज का भाव वहां पर नहीं होता है, ये तो बने रहते क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है, ये उसके गुण हैं, वो कभी भी उससे पृथक नहीं होते। अब ठीक है सिद्ध भगवान सिद्ध बन गए तो उसके बाद क्या कहां जाएंगे, केति तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्। कहते सब कर्मों का वियोग होने पर मुक्त जीव कहां जाते, तो कहते लोक के अंत भाग तक चले जाते हैं। तो और ऊपर नहीं जा सकते क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि आगे जाकर के कहेंगे कि उसके ऊपर तो फिर धर्मास्तिकाय का ही अभाव है, इसलिए नहीं जा सकते। कहां तक जाएंगे, लोक के अग्रभाग तक, और वहीं जाकर के अबोड ऑफ सिद्धार्थ जिसको अपन कहते सिद्ध शिला, वहां पर उनका स्थान है, वहां जाकर के और ठहर जाती है वो आत्मा। आत्मा शरीर से रहित होने पर हो जाती है, इसके बाद भी चूंकि जीव आदि जो छह द्रव्य हैं उनके लिए भी आवश्यक है कि धर्मास्तिकाय होना चाहिए गति के लिए, और अलोक आकाश में तो धर्मास्तिकाय है नहीं, इसलिए उसके आगे फिर गमन नहीं होता है। अब देखो इतने विवक्षा अगर न समझ पाए अपन तो क्या कैसी व्याख्या करेंगे, हम व्याख्या बता रहे हैं आपको, बहुत सुनते हैं आप इस तरह की व्याख्या, केवली सिद्ध भगवान बनने के बाद वे लोक के अग्रभाग पे जाकर स्थित हो गए। अच्छा बताओ उपादान में आगे जावे की योग्यता है कि नहीं, योग्यता तो उपादान में है, जब इतने ऊपर चले गए तो और थोड़े चले जाते। कहते नहीं जा सकते, निमित्त भी चाहिए, धर्मास्तिकाय चाहिए। तो यहां पर मालूम पड़ता है कि उपादान में योग्यता होवे और निमित्त न होवे तो भी कार्य नहीं होता है, लेकिन इसकी प्ररूपना दूसरे ढंग से भी कर देते हैं कि क्रियावती शक्ति जीव की इतनी ही है, इसलिए जो है वहीं तक जाकर के स्थिर हो जाता। जी नहीं कहेंगे कि धर्मास्तिका, क्योंकि निमित्ताधीन दृष्टि हो जाएगी फिर, और ये तो सच्ची बात, लिखा तो वैसे ही है, लेकिन ये ही मजा है अपने यहां पर ग्रंथ के साथ में कि थोड़ो ज्ञान प्राप्त कर लो और चाहे जैसो प्ररूपण करो, और सुन भी बारो बुद्धू है तू हूं गजू कहने नहीं है, आप हूं गद्दी बिठा दो अब चाहे जैसे कहते रहो। नहीं भैया, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम लोग शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें लिखा अज्ञानाद दवी व्रतम नीमिनो वर्तिस हम चान्य था तस्मिन नर्जित मस्सति प्रतिनवम चैनो निराकुर्वती। अज्ञानता पूर्वक अगर मैंने या हटाग्रह पूर्वक हे भगवान आपके द्वारा कहे गए तत्व का अन्यथा प्ररूपण किया हो या अन्यथा अपने भीतर मान करके आचरण किया हो तो उस सब के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। इसलिए कोई भी विवक्षा हो उसको ठीक समझना, यहां कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान अब मुक्त होने पर कहां तक जाते हैं, तो लोक के अग्रभाग पर जाकर स्थित हो जाते। क्यों? क्योंकि वहां तक उसके आगे फिर धर्मास्तिकाय का अभाव है, निमित्त का अभाव है। उपादान में शक्ति तो फिर भी है, जाएं तो जा सकते हैं। और वहीं तक क्यों चले गए भाई, मुक्त होने के बाद? ऐसे ही कोई फोर्स वगैरह होता है क्या उनको भेजने के लिए कोई इस तरह का? कहते नहीं, पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच। कहते पूर्व प्रयोग से और संग के अभाव होने से, बंधन के टूटने से और वैसा गमन का स्वभाव होने से ही मुक्त जीव ऊपर जाते हैं। कहते समझ में नहीं आया, उदाहरण दो तो समझ में आए। तो उदाहरण देते अगले वाले सूत्र में, देखो कितना उपकार है अपने ऊपर। अपन मंद बुद्धि हैं तो उनके लिए भी आचार्य भगवंत कृपा करके और हमारे समझ में आ जावे ऐसी बात लिखते। अगला सूत्र लिख दिया, आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपकत लेपालावुवधेरण्य बीज वदग्नि शिखावच। कहते जो हमने ऊपर बात कही उसी को आप उदाहरण से समझ सकते। पूर्व प्रयोगात, जैसे कुलाल कहलाता कुम्हार, कुम्हार का चका है सो एक बार घुमा देता वो और फिर अपना घड़ा बनाना शुरू कर देता। वो कुम्हार का चका तो घूमता ही रहता है, एक बार जोर से घुमाया तो घूमता रहता। कहते ऐसा ही पूर्व में जो उनका प्रयोग है, जिसको अपन क्या कहें, भगवान के उसमें कैसा लगाएंगे, कुम्हार के उसमें तो लगा दिया कि चके को घुमाता है, उसी प्रकार से अपना स्वभाव जो है उस है वो अलग है, वो तो आगे आएगा। पूर्व प्रयोग से क्या लिया है,
गति तक जाएगा यहाँ से
नहीं, एकदम जो है एग्जैक्ट उसको पूरा नहीं घटित नहीं होगा। जैसे पूर्व प्रयोग का मतलब है कि कुम्हार के चाक को गति मिलने पर वो कुम्हार के द्वारा घुमाना बंद करने पर भी घूमता रहता है, उसी तरह कर्म के उदय का अभाव होने पर ये जीव और अपने आप ऊपर की तरफ गमन करता है, ये इसका है। अब कोई उसको रोटेट करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार रोटेट कर दिया है कर्मों के उदय से तो अब उसके अभाव होने पर वो ऊपर चला जाता है। लगता है इस उदाहरण को ऐसे ही अपन घटित करेंगे हैं? क्या दिया, इसी प्रकार संसार में स्थित आत्मा ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए हाँ अनेक बार प्रणिधान किया, उसका अभाव होने पर भी उसके आवेश पूर्वक पहले जो हमने मुक्त होने के लिए प्रयास किया है, यही बात है। तो उस पूर्वोपार्जित जो प्रयोग था उसके द्वारा ये जीव गति करके ऊपर चला जाता है। ठीक बात, एकदम घटित नहीं हो रहा था दोनों। फिर कहते संगत्वात असंगत्वात, संग छूट गया। जैसे कि कोई चीज है तुमड़ी ले लें, अब तुमड़ी तो वैसे जो है पानी में डूबती नहीं, अब उसके ऊपर अगर किसी ने मिट्टी लगा दी तो भारी हो गई, भारी हो गई तो नीचे डूब गई, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मिट्टी गली हटी तो अपने आप तुमड़ी किसी ने ऊपर नहीं, अपने आप आ गई ऊपर। इसी तरह से लेप से लगी हुई तुमड़ी का लेप अगर हट जाता है तो वो अपने आप ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार आत्मा में से कर्मों का लेप हटते ही साथ वो आत्मा अपने आप ऊर्ध्वगमन कर जाती है। और बंधत छेदात एरंड बीज वत, जैसे कि एरंड अंडी का बीज होता है, जब वो चटकता है तो उसमें से अपने आप बीज निकल करके ऊपर, वो बच्चे लोग नहीं करते, वो एक पकड़ लेते हैं वो रुए रुए वाला है और फिर उसको फूंक देते हैं कि जाओ फिर बाद में आना। वो बीज है वो एरंड का, वो फूटती है बॉडी और उसमें से इस तरह से उड़ करके निकल जाती। इसी तरह एरंड के बीज के समान बंधन टूटा और मुक्त हो गए। इसी तरह हमारे कर्मों का बंधन टूटता है तो जीव मुक्त होकर ऊपर की तरफ गमन कर जाता है। और कहते तथा गति परिणामाच अग्निवत अग्नि शिखावत च, जैसे कि अग्नि की शिखा हमेशा ऊपर की तरफ ही चली जाती है। उसको कितने ही आप ऐसे दीपक को उल्टा भी कर दो तब भी उसकी ज्योति जो है शिखा लौ जो है ऊपर की तरफ ही जाएगी। उसी तरह से ये चार उदाहरण दे दिए कि सिद्ध जीव जो है मुक्त होने के बाद ऊर्ध्वगमन ही करता है, चाहे उसको अपने स्वभाव से मान लो, चाहे बंध का अभाव हो जाना मान लो, चाहे कर्मों का लेप का अभाव होना मान लो, और चाहे पूर्व प्रयोग मान लो। किसी भी प्रकार से वो जीव ऊर्ध्वगमन ही करता है। और आगे क्यों नहीं जाता, तो एक सूत्र आ गया इसमें, धर्मास्तिकाया भावात्। धर्मास्तिकाय का भाव होने से मुक्त जीव लोक के अंत भाग में ही ठहर जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। ये आखिरी सूत्र है सब सिद्धों का। नौवें सूत्र की व्याख्या करें कि आपके प्रश्न का जवाब दें, प्रश्न उत्तर में देंगे आपके प्रश्न का। तो कहते हैं कि सब जीवों का, सिद्ध जीवों का स्वरूप तो एक सा है, लेकिन अतीत काल की अपेक्षा से और वर्तमान की अपेक्षा से भी कुछ बातों का विचार यहाँ किया गया है कि इन अपेक्षा से सिद्धों में भी अंतर कर दिया। वैसे तो सिद्धों का स्वरूप सब सिद्ध भगवान एक से हैं, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो वर्तमान में तो सब सिद्ध क्षेत्र, जहाँ जहाँ से सिद्ध जीव हुए उन सब, वो सब सिद्ध क्षेत्र कहलाएंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अपने आत्म प्रदेशों से ही सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। अतीत काल की अपेक्षा से देखा जाए तो कहाँ से सिद्ध हुए, तो कहते मनुष्य लोक से ही सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं, इसलिए ये विशेषता हो गई सिद्ध जीवों की, और कहीं से नहीं प्राप्त होंगे। कहते काल की अपेक्षा से देखा जाए तो वर्तमान काल में कर्म से मुक्त होने के क्षण में ही सिद्धत्व का काल है, जिस क्षण मुक्त हुए वही सिद्धपने का काल है, लेकिन अगर देखा जाए अतीत की दृष्टि से तो उत्सर्पणी अवसर्पणी इनमें जन्मे जीव ही सिद्धत्वपने को प्राप्त करते हैं, या कि ये कहें कि तीसरे काल के अंत में और चौथे काल में जन्मे हुए जीव ही सिद्धपने को प्राप्त करते, ये इस अपेक्षा से हैं। अभी तीसरे काल के अंत में, वैसे तो चौथे काल के शुरुआत से अंत तक ही इस काल में ही जीव सिद्धत्वपने को प्राप्त होते हैं। गति की अपेक्षा से देखा जाए तो सिद्धों की गति कौन सी है, कहते सिद्ध गति, लेकिन अतीत की अपेक्षा से देखा जाए तो सब सिद्ध किस गति से हुए सिद्ध, कहते मनुष्य गति से, इसलिए गति की अपेक्षा से सिद्धों के मनुष्य गति भी हो गई। और लिंग की अपेक्षा देखा जावे तो अंतरंग में भाव लिंग की अपेक्षा से तो तीनों लिंग हो सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान में कौन सा लिंग होगा, तो कहते पुरुष वेद होगा द्रव्य की अपेक्षा, और या कि निर्ग्रंथ लिंग है, उसी निर्ग्रंथ लिंग की अपेक्षा से जीव सिद्ध होते हैं। और तीर्थ की अपेक्षा देखें तो तीर्थंकर के सद्भाव में सिद्ध होने वाले जीव हैं, और तीर्थंकर के अभाव में भी सिद्ध होने वाले जीव हैं, उनकी अपेक्षा से भी अपन कहेंगे कि जब तीर्थ काल चल रहा था, तीर्थंकर थे तब ये जीव सिद्ध हुए, और ये जीव जब तीर्थंकर चले गए उसके बाद सिद्ध हुए, जैसे ऋषभदेव भगवान के पहले भी सिद्ध हो गए और ऋषभदेव भगवान के बाद में भी हुए, जिस समय ऋषभदेव भगवान थे उस समय भी हुए होंगे, इस तरह से उनमें फर्क हो गया। और बिना तीर्थंकर हुए सिद्ध हुए और तीर्थंकर होकर के सिद्ध हुए, ये भी अंतर हो गया सिद्धों में। इस प्रकार से देखो अंतर करने की विवक्षा है, वैसे तो सब सिद्ध हैं, सो सब सिद्ध समान है। फिर कहते चारित्र की अपेक्षा देखा जावे तो उनका कोई चारित्र नहीं है, वास्तव में देखा जावे तो सब वो तो उससे पार हो गए हैं, लेकिन अतीत की अपेक्षा देखा जावे तो विभिन्न चारित्र, पांच प्रकार के चारित्र से ही वे सिद्धत्व को प्राप्त होते, और अंतिम चारित्र कौन सा था, तो कहते यथा ख्यात चारित्र से ही सब जीव सिद्धत्व बने को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बुद्ध, प्रत्येक बोधित और प्रत्येक बुद्ध या बोधित बुद्ध, ऐसे दो प्रकार के बुद्ध होते हैं। एक तो स्वतः ही बोध पा करके, जैसे तीर्थंकर हैं, उनको किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं होती और वे मोक्ष मार्ग को अंगीकार कर लेते हैं, ये कहलाते हैं प्रत्येक बुद्ध। और बोधित बुद्ध जिनको दूसरे के उपदेश के द्वारा मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप जानने में आता है, फिर भी सिद्ध होते हैं, तो दोनों प्रकार के सिद्ध हो गए। एक तो प्रत्येक बुद्ध हैं, स्वतः ही मोक्ष मार्ग अंगीकार कर लिया, दूसरे परोपदेश के द्वारा अंगीकार करके फिर सिद्ध बने को प्राप्त किया। इस प्रकार प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध ऐसा हो गया। और फिर ज्ञान की अपेक्षा देख लें तो जितने केवल ज्ञानी हैं वे ही तो सिद्ध होते हैं ऐसा देख लें, लेकिन अतीत की अपेक्षा से देखें तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, इन सब ज्ञानों वाले जीव ही सिद्ध होते हैं। तो दोनों दृष्टि से देखें, अवगाहना की अपेक्षा से देखें तो जितना चरम शरीर है आखिरी का उससे कुछ कम अवगाहना सिद्धों की होती है। अधिक से अधिक कितनी 500 धनुष और कम से कम 3.5 हाथ की अवगाहना रहेगी। और अतीत की अपेक्षा देखें तो कुछ कम 3.5 हाथ और वैसे उत्कृष्ट जो है 525 धनुष भी लिया है, 525 धनुष भी लिया, 525 लिया, 500 नहीं 525 बाहुबली भगवान की थी, इतनी अवगाहना भी बन जाती है। अंतर की अपेक्षा सर्पनी की अपेक्षा से है, वैसे तो 500 धनुष रहे, ठीक बात। और कहती अंतर की अपेक्षा तो लगातार सिद्ध हो गए और बीच में अंतर वाले सिद्ध हो गए, कुछ समय तक कोई सिद्ध नहीं हुआ फिर सिद्ध बने तो वो सांतर कहलाएंगे, और निरंतर सिद्ध बने तो वो निरंतर कहलाएंगे। एक जीव के सिद्ध होने पर अनंतर फिर दूसरे समय में जब कोई सिद्ध होता है तो वो निरंतर सिद्ध कहलाते, और जब कोई एक जीव सिद्ध हुआ और उसके बाद बीच में अंतराल पड़ गया फिर सिद्ध हुए तो वो सांतर कहलाएगा। इस तरह से अंतर की अपेक्षा में भी फर्क है। संख्या की अपेक्षा देखा जाए तो एक समय में कम से कम एक जीव सिद्ध होता है और अधिक से अधिक 108 जीव भी एक समय में सिद्ध होते हैं, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव होते हैं। 6 महीने का अंतराल पड़ गया तो 8 समय में 608 जीव जाएंगे, तो एक समय में 108 का एवरेज आ जाता है। और मध्य के और भी बहुत विकल्प हो जाते संख्या की अपेक्षा। अल्प बहुत देखें तो सिद्ध होने वालों का सिद्ध क्षेत्र में अल्प बहुत तो बनते ही नहीं, पर अतीत काल की अपेक्षा से देखें तो जन्म सिद्ध और संहरण सिद्ध दोनों प्रकार से अल्प बहुत बन जाता है। जो जिस क्षेत्र में जन्म लेते हैं वहीं से सिद्ध हो जाएं तो उनको कहते जन्म सिद्ध, और अगर उनको उठा करके ले गया और वहां डाल दिया तब वहां से सिद्ध हो गए तो उसको संहरण सिद्ध बोलते हैं। कहते संहरण सिद्ध वाले तो सिद्ध अल्प हैं और जन्म सिद्ध उससे संख्यात गुने हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्व लोक से सिद्ध होने वाले सबसे कम हैं, क्योंकि किसी ने ले जाकर के आकाश मार्ग पे और मुनि महाराज ध्यान में लीन थे छोड़ दिया और वहीं पर आकाश में नीचे नहीं आ पाए, उतने में ही केवल ज्ञान हो गया और सिद्ध बना प्राप्त हो गया, तो जी ऊर्ध्व लोक से सिद्ध कहलाएंगे। और वो सबसे थोड़े अधो लोक से किसी ने नीचे डाल दिया और फिर सिद्धत्व को प्राप्त हुए तो वो अधो लोक सिद्ध, उससे संख्यात गुने, असंख्यात गुने लिखा है इन्होंने, संख्यात होना चाहिए। और फिर तिर्यग लोक जहां पर अपन रहते हैं वहां से सिद्ध होने वाले तो और संख्यात गुने हैं। समुद्र से सिद्ध होने वाले कम हैं और द्वीप से सिद्ध होने वाले उससे संख्यात गुने हैं। इसी प्रकार से हम और भी विशेष जो है सिद्धों के बारे में विचार आगम से कर सकते हैं। तत्वार सूत्र में इस तरह से हमें 10 दिन में अपने मोक्ष मार्ग के लिए चलने के लिए कितनी तैयारी करनी है ये बता दिया। मैं तो सोचता हूँ ये 10 दिन हमारे आगामी जीवन की तैयारी के दिन हैं। इन 10 दिनों में जिसने जैसी तैयारी करी होगी उसका आगे का जीवन वैसे ही होगा। ये नहीं समझना कि 10 दिन अपने पूरे हो गए अब तो जैसा जीते थे पहले सो अच्छो है अब वैसे ही जैसो जीना, नहीं। इस 10 दिनों में हमने सीख लिया कि ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है, और हम कैसे 355 दिन जीते हैं, समय नहीं मिलता धर्म करने के लिए, और इन 10 दिनों में कहां से मिल गया, गृहस्थी भी चलती रही और धर्म ध्यान भी होता रहा। तो ऐसा ही आगे के दिनों में भी अपना समय अपने को निकाल के धर्म ध्यान में अधिक समय लगाएं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। सूचना पहले देना या बाद में, भक्ति कर लें, भक्ति करके फिर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञाग्नि स्वरूप तुम्हारा गे शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो पापा पर भास वेखो मानु शिव कहानी है। सहो द्रव्य जान वेखो बंद वेद मान वेखो सफर पहचान वेखो परम प्रमाणी है। वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो ये
करना देख